ओम शांति आज 28 मई 2017 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 3 अप्रैल 1982 के महावाक्य है सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग बाप दादा अपने त्याग मूरत बच्चों को देख रहे हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है लेकिन जैसे भाग्य का सुनाया ना कि एक बाप के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबर बन जाते हैं ऐसे त्याग मूरत तो सभी बने हैं इसमें भी नंबरवार है त्याग किया और ब्राह्मण बने लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है कहने में तो सभी एक बात कहते कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग तो देह का भान का त्याग हो गया है वह हो रहा है त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया अपने पन से किनारा कर लिया अपना अधिकार समाप्त हुआ जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हो जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं और अगर फिर वापस आ जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर पुराने देह का भान त्याग किया संकल्प किया के बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे पहला यह त्याग किया इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग देह के भान का त्याग तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं आ जाते हो वायदा क्या किया है तन भी तेरा कहा वो सिर्फ मन तेरा कहा पहला शब्द तन आता है जैसे तन मन धन कहते हो देह और देह के संबंध कहते हो तो पहला त्याग क्या हुआ इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा यह पहला कदम है त्याग का जैसे घर में घर की सामग्री अर्थात सामान होती है ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियां ही सामग्री है तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग घर को छोड़ा लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे ऐसे कोई भी कर्म इंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया बाकी कोई एक कर्म इंद्रिय विचलित होती है वह भी समय पर ठीक हो जाएगी लेकिन कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी एकरस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर वन में जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे जवाहर महल माड़ियां छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा। जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता, वैसे हीरे से भी ज्यादा वह फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। न चाहते भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सब का त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो यह तो बहुत थोड़ा है, लेकिन यह थोड़ा भी बहुत कुछ गवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है। उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो। त्याग का पहला कदम पूरा किया है। बाप दादा हंसी की बात यह सुनते हैं कि वर्तमान समय कोई भी अपने को कम नहीं समझते। अगर किसी को भी कहा जाए कि दो में से एक छोटा एक बड़ा बन जाए तो क्या करते हैं? अपने को कम समझते हैं। क्यों? क्या की शस्त्र लेकर उल्टा शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। यह भी अलंकार कोई कम नहीं है। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार है, वैसे माया व रावण की भुजाएं भी कोई कम नहीं है। शक्तियों को भुजाएं धारी दिखाया है, अष्ट भुजाधारी 16 भुजाधारी भी दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं। यह क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को ही हलचल में लाती है। जिस समय कोई भी माया आती है तो सेकंड में उसके कितने रूप होते हैं? क्यों? क्या? ऐसे वैसे जैसे कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं। एक काटते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती हैं। तो एक बात को 10 सिर लग गए ना। इन बातों का तो अनुभव है ना। फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाता है, यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं, शक्ति अर्थात सहयोगी। अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्वभुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हर छोटी सी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेगी। क्यों, क्या, कैसे के सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करती रहेंगी, क्यों का क्वेश्चन हल करेंगी, तो फिर कैसे का सिर ऊंचा हो जाएगा। अर्थात एक बात को सुलझाएंगी तो फिर दूसरी बात शुरू कर देंगी, दूसरी बात को ठीक करेंगी तो तीसरा सिर पैदा हो जाएगा। बार बार कहेंगे यह बात तो ठीक है, लेकिन यह क्यों, वह क्यों। इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 शीश लगाने वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेंगे, सदा हर बात में ऑपोजिशन करेंगे। तो ऑपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय हो गए ना। चाहे ब्राह्मण बन गए, लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, वशीभूत होते हैं और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा सहयोगी होंगे। सहयोग की निशानी भुजाएं हैं, इसलिए कभी भी कोई संगठित कार्य होता है तो क्या शब्द बोलते हो, अपनी अपनी अंगुली दो। तो यह सहयोग देना हुआ ना, अंगुली भी भुजा में है ना, तो भुजाएं सहयोग की ही निशानी है। तो समझा, शक्ति की भुजाएं और रावण के सिर। तो अपने को देखो कि सदा सहयोगी मूरत बने हैं। त्याग मूरत बनने का पहला कदम फॉलो फादर के समान किया है। ब्रह्मा बाप को देखा, सुना, संकल्प में, मुख में सदैव क्या रहा, यह बाप का रथ है। तो आपका रथ किसका है? क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया व आप लोगों ने भी रथ दिया? ब्रह्मा का प्रवेशता का पाठ अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा, न कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ जहाँ बिठाओ, यह वायदा है ना। वह आँख को मैं चलाऊंगा, बाकी को बाप चलाए। कुछ मनमत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे, ऐसा वायदा है ना। तो कोई भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत होना यह श्रीमत है व मनमत है। तो समझा, त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है, इसलिए नंबर बन गए हैं। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई है, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत है। यह पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? अभी अभी मिलता है, भविष्य मिलना तो कोई बड़ी नहीं। लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट अभी ही बनते हो। परंतु अगर न यहाँ के न वहाँ के रहते हो तो मुश्किल लगता है, न पूरा छोड़ते हो न पूरा लेते हो तो अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा श्वास उठता है। मरने में तो मजा है लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो पूरा लेंगे और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दें। बाप को क्या परवाह है, भले रखो लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है, बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है। फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, कितने भी इकट्ठे कर लो, लेकिन जहाँ किचड़ा होगा वहाँ क्या पैदा होंगे, मच्छर, और मच्छर किसको काटेंगे। तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है। जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो, मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। अच्छा, ऐसे सदा सहयोग मूरत, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के सन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पार्टी परिस्थिति रूपी पहाड़ को स्वस्थिति से जंप देकर पार करो। अपने को सदा समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्मा अर्थात सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाले। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तियां शस्त्र है, अलंकार है। ऐसे अलंकार धारी आत्मा समझते हो। जो सदा समर्थ है वे कभी परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, परिस्थिति को पार कर सकते हो। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए कितने पहाड़ कितने समुद्र पार कर लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते हैं तो ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को व समुद्र को भी जंप दे दिया, मेहनत का अनुभव नहीं होगा। दूसरी पार्टी रोब को त्याग, रुहाब को धारण करने वाले सच्ची सेवाधारी बनो। सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो, रोब में तो नहीं आते। यूथ को रोब जल्दी आ जाता है, यह समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी यूथ अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले सदा नम्रचित, क्योंकि जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माण होंगे वहाँ रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोब आया तो वह सेवा समाप्त हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भवन। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकते। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति।